सप्तम स्कंध अध्याय दो श्लोक नंबर 49 अथ नित्यम अनित्यम वा नेह शोचन्ति तद्विदः नान्यथा शक्यते कर्तुं स्वभाव शोचतामिति अथ नित्यम अनित्यम वा नेह शोचन्ति तद्विदः नान्यथा शक्यते कर्तुं स्वभाव शोचतामिति अथ नित्यम अनित्यम वा नेह शोचन्ति तद्विदः नान्यथा शक्यते कर्तुं स्वभाव शोचतामिति शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य इसी भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की शब्दार्थ मेरे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। अथ अतएव नित्यम शाश्वत आत्मा अनित्यम नश्वर भौतिक शरीर वा अथवा न नहीं यह इस संसार में सोचन्ते शोक करते हैं तद्विदः जो शरीर तथा आत्मा के ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं न नहीं अन्यथा अन्यथा शक्य समर्थ हैं कर्तुं करने के लिए स्वभावः प्रकृति सोचतां शोक करने वालों का इति इस प्रकार अनुवाद ऐसी भक्ति विदान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज की। मैं अनुवाद को पढ़ रहा हूँ, आप लोग एक बार पहले ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद मेरे पीछे बोलिएगा। जिन्हें आत्म साक्षात्कार का पूरा पूरा ज्ञान है, जो यह भली भांति जानते हैं कि आत्मा नित्य है किंतु शरीर नश्वर है, वे शोक द्वारा अभिभूत नहीं होते। किंतु जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता, वे शोक करते हैं। अतएव मोहग्रस्त व्यक्ति को शिक्षित कर पाना कठिन है। कृपया इस अनुवाद को मेरे पीछे दोहराइए। जिन्हें आत्म साक्षात्कार का पूरा पूरा ज्ञान है, जो यह भली भांति जानते हैं कि आत्मा नित्य है किंतु शरीर नश्वर है, वे शोक द्वारा अभिभूत नहीं होते। किंतु जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता, वे शोक करते हैं। अतः मोहग्रस्त व्यक्ति को शिक्षित कर पाना कठिन है। हरे कृष्णा। तो प्रसंग, अभी हिरण्यकश्यपु जी का उपदेश करने के बाद अब यमराज जी यह श्लोक बोलते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हिरण्यकश्यपु जी ने आत्मा और देह के संबंध में अपने संबंधियों को ज्ञान दिया, वही ज्ञान एक कथा के माध्यम से समझाने का उन्होंने धैर्य धारण करने का प्रयास कराया, लेकिन मोह जनित जीव जब तक मोह का परित्याग नहीं करेगा तब तक इस आत्मीय स्तर के ज्ञान को पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर पाएगा। हम लोग इसी अध्याय के 22वें श्लोक पढ़ चुके हैं। 22वें श्लोक में भी शरीर और आत्मा के विषय में बताया गया है। श्लोक नंबर 25 में भी शरीर और आत्मा का विश्लेषण किया गया है। यह उपदेश हिरण्यकश्यपु के द्वारा दिया गया अपने संबंधियों को देह और आत्मा के विषय में। अब वही देह और आत्मा के संबंध का विशेष विवरण यमराज जी सुना रहे हैं। जो सुयज्ञ नामक ब्राह्मण के संबंधी लोग हैं, जो सुयज्ञ के लिए शोक कर रहे हैं, उनको समझाने का प्रयास यमराज जी कर रहे हैं। क्योंकि ज्ञान समय देख करके दिया जाता है। अगर ज्ञान असमय में दिया जाए तो मनुष्य का विवेक काम नहीं करता। इसलिए जैसा समय देखा जाए उसके अनुसार ज्ञान देना चाहिए। यमराज जी ने सुयज्ञ नामक ब्राह्मणों के संबंधियों का विलाप सुना और व्यर्थ रूप में ब्रह्म के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं कि हे ब्रह्मा, तूने ऐसा क्यों बनाया? अगर बनाया भी तो तू किसी जीव को क्यों छीन ले जाता है, क्यों किसी को मार देता है? यह व्यर्थ का उलहना संबंधी लोग अपने विमोह के कारण किसी दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं। हम लोग इस संसार के जीव हैं, हम लोग देखते हैं संसार में अगर किसी का पुत्र मर जाता है, किसी का कोई प्रिय से प्रिय संबंधी मर जाता है, तो कुछ कहते हुए रोता है। भागवत में उसको विलपन शब्द से व्यतीत किया गया है, जानकारी दिलाया गया है विलाप शब्द से, कि विशेष रूप से लाप करते हुए लोग रोते हैं। लाप का अर्थ होता है कुछ कहते हुए रोना, अलापना। तो उसी प्रकार जब सुयज्ञ नामक ब्राह्मण के संबंधी लोग विलाप कर रहे थे तो सुसमय देख करके, सुंदर समय देख करके कि यह उपदेश हमारा यहाँ कार्य करेगा, तो यमराज जी ने उपदेश दिया। देखिए, किसी भी जीव को संतुष्टि देने हेतु समय का विचार करके उपदेश देना चाहिए। ठीक अच्छे समय पर यमराज जी यहां उपदेश दे रहे हैं और यह उपदेश कोई साधारण उपदेश नहीं है जो कि भागवत जैसे पवित्र ग्रंथ में रखा गया है। किसी के रोने धोने से इस भागवत को क्या लेना है, किसी को जीने से क्या लेना है? लेकिन नहीं, हमें कैसे जीना है और इस संसार में हमें कैसे इस संसार से पृथक होकर के इस जगत में हम आनंद लें, उस प्रक्रिया को भागवत सिखाया है। जैसे यमराज जी श्लोक बोलते हुए आ रहे हैं तो 42 श्लोक में उन्होंने कहा है कि इदम शरीरम पुरुषस्य देहजम, कि यह शरीर पुरुषों के मोह के कारण उत्पन्न होता है। देह जम तीन अक्षर है। देह मतलब शरीर, ज मतलब जन्म लेने वाला, जो शरीर से जन्म लिया है अपने संबंध, अपने शरीर के विषय में और अपने संबंधियों के विषय में। इसी विमोह के कारण जीव इस जगत में बार बार आता है। अगर जिस दिन हम इस देह से थोड़ा सा पृथक की अनुभूति करेंगे, अगर कोई मकान में रहने वाला व्यक्ति अगर मकान ही अपने को समझ ले तो उसकी मूर्खता है। वह मकान में है लेकिन वह मनुष्य स्वयं कहे कि मैं ही मकान हूं, उसकी मूर्खता है। दूसरा उदाहरण देते हुए समझाते हैं जमराज जी कि जैसे काष्ठ के अंदर अग्नि है, आग है, अगर लकड़ी को लकड़ी से घिसा जाए तो अग्नि उत्पन्न हो जाती है लेकिन वो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन आप काठ को आग नहीं कर सकते। वैसे ही इस शरीर को आप आत्मा नहीं कर सकते। इस शरीर में आत्मा है, आत्मा है तो शरीर है। कभी कभी यह भी देखा जाता है कि आत्मा को भी शरीर धारण करने की जरूरत पड़ती है, अन्यथा दिव्याति दिव्य सुख या भौतिक सुख की अनुभूति हम बिना शरीर ग्रहण किए नहीं अनुभूति कर पाते। इसलिए यह जो शरीर है इसी की सुरक्षा हेतु, इसी की पालन हेतु, इसी को मतलब किस तरह सुख दिया जा सके, इसी के प्रयास में सारा संसार भागदौड़ कर रहा है। कहाँ ऐसा स्कूल है जहां देह और आत्मा के विषय में पढ़ाया जाता है। देह को विशेष रूप से कैसे सुंदर बनाया जाए, कैसे भोगों में लिप्त किया जाए, कैसे इसको आनंद प्रदान किया जाए। जय श्री श्री राधा राधा राधिका रमण जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्रील प्रभुपाद महाराज की। कैसे इस देह को आनंदित किया जाए, इसी के प्रयास में सारा संसार लगा हुआ है। लेकिन भागवत कहता है, सारे शास्त्र एक स्वर से यही कहते हैं कि जब तक आत्मीय सुख की अनुभूति हम नहीं करेंगे तब तक देह धारण करने के बाद भी आनंद की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात भागवत यह भी कहता है कि यह शरीर ही दुखों का भंडार है और इसी दुखों की छुटकारा पाने हेतु हर प्रयास चल रही है। लेकिन जब तक हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम गच्छामि, जब तक मनुष्य इस सूत्र को याद नहीं कर लेता तब तक उसकी भाव रोग की यह बीमारी दूर नहीं होगी। अगर इस शरीर की बीमारी से, सब प्रकार की बीमारियों से अगर हम दूर होना चाहते हैं तो भागवत यही सिखाता है कि तुम देह और देहज इन संबंधों से पृथक सोचकर, अलग होकर के सोचने का प्रयास करो तो पता चलेगा कि देह ही कौन है। जो आनंद की अनुभूति जो करा रहा है वह है कौन। अगर आनंद का भंडार जो है, जहां से आनंद की शुरुआत होती है, अगर उस आनंदमय व्यक्ति से बिना जुड़े हुए हम स्वतंत्र होकर के आनंद लेने का प्रयास करेंगे तो कहां तक हमें आनंद मिल पाएगा। और वही चीज इस आज के श्लोक में बताया गया। और आज का जो श्लोक है कल के श्लोक से बिल्कुल संबंधित है, क्योंकि जब तक हम लोग इस धरातल पर नहीं पहुंचते कि मतलब हमारी स्थिति क्या है, इस श्लोक के अंदर आया है निचले लाइन में स्वभाव, जो वेदविद या जो तत्वविद व्यक्ति होते हैं, पहले के लाइन में तत्वविद शब्द है कि जो तत्ववेता लोग होते हैं, जो तत्व से विदा, जो ठीक रूप से अपने स्वरूप को जानते हैं, वही इस संसार में आकर के कुछ संसारिक विषयों को सोचने में अपने समय बर्बाद नहीं करते हैं। लेकिन जो तत्वविद नहीं है, जो अल्पविद है, जो अधकचरा है, जिसको कुछ भी पता नहीं है, वह व्यक्ति इस संसार में सब प्रकार के दिखावा करता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, मेरे जैसा विरक्त, मेरे जैसा महात्मा, मेरे जैसा सुंदर साधु और कोई नहीं है। और इसी की दिखावा करने में हम लोगों की पुनः शरीर का निर्माण होता है, पुनः देह का निर्माण होता है। इस श्लोक में नित्यम अनित्यम ये दोनों शब्द हैं। कि हम अगर अपने असली संबंध जिनसे है अगर उनसे जुड़े हैं तो हम भी नित्य रहेंगे, नहीं हम भगवान से अपना संबंध छोड़ दिए तो हमारा अस्तित्व कुछ नहीं है। इसलिए अपने स्वभाव को हम भूलने के कारण इस शरीर में पुनः आते हैं। अगर हम स्वतंत्र, प्रभुपाद जी ने लिखा है इससे पिछले वाले श्लोक के अनुवाद में और तात्पर्य में भी इस बात का उन्होंने व्याख्या किया है कि जब जीव स्वतंत्र होकर के, भगवान से स्वतंत्र होकर के आनंद लेने का प्रयास करता है तो वह पुनः अपने शरीर का निर्माण करता है, क्योंकि असली भोक्ता भगवान है। अगर उनके आनंद में हम अनुभूति आनंद की करते हैं तब तो हम हद तक ठीक हैं, अन्यथा स्वतंत्र होकर के आनंद लेने का प्रयास करते हैं तो हम फंस जाएंगे, और यही फसावट सबके साथ है। क्योंकि जो आज का अनुवाद है उसमें प्रभुपाद जी ने लिखा है कि जिन्हें आत्म साक्षात्कार का पूरा पूरा ज्ञान है, जो जब भली भांति जानते हैं कि आत्मा नित्य है किंतु शरीर अनित्य है, नश्वर है। हम लोग कहने को तो कहते हैं कि शरीर नश्वर है, लेकिन इसके लिए हम क्या प्रयास नहीं करते। अपने जीवन का अमूल्य समय, पूरा पूरा जीवन इसी को सुरक्षा प्रदान करने में और इसी को पालने में लगा देते हैं। एक कवि ने लिखा है कि मनुष्य के पास 24 घंटे का समय है, तो 24 घंटे में से 3 हिस्से से भी ज़्यादा समय वह शरीर को सफाई करने में लगाता है, मेंटेन करने में लगाता है, लेकिन फिर भी वो गंदा का गंदा ही रहता है। शरीर में 9-9 छिद्र है जहां से गंदगी निकलती है, एक को सफाई किया दूसरा गंदा हुआ, दूसरे को सफाई किया तीसरा गंदा हुआ, ऐसे हमारा जीवन बीत जाता है। लेकिन जो आंतरिक सफाई है, जो हृदय की मलिनता है, उसको सफाई करने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं। विधिनोति सुहृत साम, भागवत के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय में यह आया है कि पहले हृदय की धुलाई करो, विधिनोति विशेष रूप से धुलाई करो। जैसे धुनिया होता है रुए का धुलाई करता है, मार मार करके रुए की सफाई करता है, रुई की गंदगी को निकालता है, वैसे ही आप अपने हृदय की धुलाई करो। आंतरिक सफाई तब होगी जब भागवत के अनुसार हम अपना जीवन धारण करेंगे। तत्वविद बनना पड़ेगा। भगवान ने जो कहा है उसका केवल हम अनुमोदन करते जाएं और उस पथ पर चलने का प्रयास करते जाएं तो तत्वविद मतलब हम अपने असली स्वभाव को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन हम अलगाव अलग की रास्ते पकड़ते हैं और अलग की रास्ता पकड़ने के कारण ही पुनः फिर मोहजनित संसार में आते हैं और देहज से मोहज उत्पन्न होता है। देहज हमने उत्पन्न कर लिया तो मोहज अपने आप हो गया, मोह का भी जन्म हो गया। मोहज और देहज, हमने देहज धारण किया, देह से देही उत्पन्न किया जिसके कारण मोह का भी जन्म हो गया और उसी मोह में मोहित होकर के इस जीवन को हम कैसे बिता लेते हैं पता ही नहीं चलता, क्षण भर लगता है। इसलिए आगे लिखते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर, अनुवाद के अंदर, किंतु जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता वे शोक करते हैं। हम लोग अपने ऊपर थोड़ा विचार करें कि हम लोग किसमें हैं, हम लोग कहाँ हैं। हम लोग तत्विद हैं या देह के विषय में ही हम भी विचार करते रहते हैं, हम लोग की स्थिति क्या है। अरे उपदेश तो हम लोग देते हैं लेकिन ये सिद्धांत अपने ऊपर भी लागू करना चाहिए। हम लोग दोनों से अलग हैं, बीच में लटके हुए हैं त्रिशंकु की तरह, न इधर के हैं न उधर के हैं। अपनी रास्ता चुन लेनी चाहिए, या तो दिव्या दिव्य आनंद लेने का प्रयास करो, पूर्ण आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करो, उस रास्ता को पकड़ो। अन्यथा अगर इस रास्ता को नहीं पकड़ पा रहे हो तो पूर्ण रूप से भौतिक जीवन व्यतीत करो। एक रास्ता चुनो। अपने ऊपर हम विचार करते हैं हम लोग तो पता चलता है कि हम कहीं के नहीं हैं। भगवान से प्रार्थना करें इस प्रकार की कि भगवान मेरे हृदय की जो भावना है कब पवित्र होगा, जो हम आपके बताए हुए इस मार्ग का अनुगमन अपने जीवन में कर पाएंगे। और हर आचार्य लोग यही कहते हैं कि अगर हम वेदनामयी असहायमयी अनाथमयी अगर प्रार्थना करते हैं कि हमारा कोई नहीं है, हमको कोई बचाने में समर्थ नहीं है, एकैक समर्थो अस्मि, हे भगवान आप ही केवल एक समर्थ व्यक्ति हैं जो आप हमें बचा सकते हैं, तो अगर उस प्रकार की हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान उस प्रार्थना को सुनते हैं। लेकिन प्रार्थना तो करनी पड़ेगी, रूटीन में तो होना चाहिए। लेकिन हम लोगों की स्थिति है कि कभी हम पढ़ते हैं पाठ करते हैं कभी छूट जाता है, कभी जप करते हैं कभी छूट जाता है, तो हम रूटीन के पक्के कहाँ हैं। जब तक अटल नहीं रहेंगे हम अपने भक्ति पथ पर तब तक ये भाव नहीं आ पाएगा। हम डूबते और इतराते रहेंगे। हम लोगों की स्थिति वह है कि जहाँ के जाते हैं वहीं के हो जाते हैं। इस्कॉन में रहे तो इस्कॉन की भक्ति धारण कर लिए, इस्कॉन का तिलक लगा लिए, कहीं बाहर गए तो कोई दूसरा तिलक धारण कर लिए। इस प्रकार के भाव नहीं होना चाहिए। इसके संदर्भ में रूपा जी तात्पर्य बहुत ही सुंदर व्यक्त कर रहे हैं कि जैसे मीमांसा दार्शनिकों के अनुसार प्रत्येक वस्तु नित्य है, प्रत्येक वस्तु नित्य है, और साख्य दार्शनिकों के अनुसार प्रत्येक वस्तु मिथ्या या अनित्य अर्थात अस्थाई है। ये दोनों जानते हैं लेकिन दोनों ही शरीर के धरातल पर कार्य करते हैं, तो भी आत्मा के असली ज्ञान के बिना ऐसे दार्शनिक मोहग्रस्त रहते हैं और सूत्रों की तरह शोक करते हैं। जब तक यह शरीर को हम शारीरिक धरातल पर हैं तो पांच चीजें हमारे जीवन में हमेशा होती हैं। वह यह है कि अगर शरीर हम धारण किए हैं अगर हम शरीर धारण भौतिक शरीर धारण किए हैं या भौतिक धारणा में हैं तो हमारे अंदर पांच चीजें जरूर आएंगे और हमें परवश स्वीकार करना पड़ेगा। वह है पहला जन्म लेना पड़ेगा, दूसरा है मृत्यु होना पड़ेगा, मृत्यु से ग्रसित होना पड़ेगा, और यह शरीर है तो शोक जरूर होगा। क्योंकि ये विषय जो है ये शरीर के हैं, आत्मा के नहीं। अगर शरीर है तो शरीर की मृत्यु होती है, और शरीर है जब मृत्यु हुआ तो उसका जन्म निश्चित है, और जन्म लिया तो शरीर का यह फल है या स्वभाव है कि उसके अंदर शोक उत्पन्न होगा, और शोक उत्पन्न होगा तो इसका मूल अज्ञानता होगा अर्थात मूर्खता होगा, जिसके कारण हम इन चीजों में फंसे रहे। अगर शरीर है तो मूर्खता हमारे अंदर जरूर है। मूर्खता इस आधार पर है कि हम इस देह के धरातल में ही अपने जीवन यापन करते रहते हैं। और पांचवा चीज है कि अगर यह शरीर है तो चिंता बनी रहेगी। अगर इन चीजों से हम अपने को तब छुड़ा पाएंगे जब हम शरीर के धरातल पर नहीं होंगे, तो यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि अगर जब तक हम शरीर धारण नहीं करेंगे तब तक भक्ति का आनंद कैसे लेंगे। क्योंकि इस बात का संकेत भागवत में भी किया गया है। देवता लोग जब भगवत की स्तुति करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं दशम स्कंद में, तो मनुष्यों की जीवन की उत्कर्षता के ऊपर विचार करते हुए कहते हैं कि मनुष्य का जीवन हम लोगों के जीवन से धन्य है। देवता लोग कहते हैं क्योंकि मनुष्य जो भक्ति करके मर्त्यलोक में आनंद ले सकता है वह आनंद हम लोगों को दुर्लभ है, देवता लोग कहते हैं। तो देह का फलानुभूति इसी में है, या देह तभी सफल पूर्ण रूप से हो पाता है जब इस शरीर से पूर्ण रूप से हम भक्ति में उत्प्रोत रहे। इस तात्पर्य के अंदर रूपा जी लिखेंगे बताएंगे संकेत किए हैं उन्होंने आज के तात्पर्य में कि जब तक मनुष्य का यह शरीर सेवा से पूरा पूरा फलीभूत नहीं हो जाता, उत्प्रोत नहीं हो जाता, तब तक वह भगवान के क्रियाकलापों को ठीक से नहीं जान पाएगा। और कल के तात्पर्य में भी शायद एक शब्द आया है, शायद हाँ इसमें है, कल के श्लोक के तात्पर्य में कि जब हमारी इंद्रियां भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाती हैं तो तो वे अतिंद्रिय अर्थात दिव्य इंद्रियां बन जाते हैं। जब हम सेवा करके इन इंद्रियों को दिव्य बना लेते हैं तो उस दिव्याति दिव्य भगवान के विषय में हम ठीक से जान पाते हैं और उनके साथ हम कार्य करने लायक बन जाते हैं, अर्थात उनके धाम में हम जाने लायक हो जाते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में भी इस प्रकार का एक श्लोक है कि सेवन मुखाद जिह्वावध सोमेरे स्वमेव स्फुरित्यदा, कि जब हमारी ये सारी इंद्रियां जिह्वा से लेकर सारी इंद्रियां जब कृष्ण के सेवा में लग जाती हैं तो हम कृष्ण को जानने में समर्थ हो जाते हैं। हमारे अंदर वो शक्ति आ जाती है कि हम भगवान को समझ सकें। इसके उदाहरण भागवतम में कई भक्तों के जीवन चरित्र से संकेत किया गया है कि अगर हम इस शरीर को भी धारण किए रहना चाहते हैं तो यह शरीर हमारा भक्त का हो। वृत्रासुर जी अपने जीवन चरित्र में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे इस संसार में आने से घबराना नहीं है, बार बार हम आते रहे, लेकिन प्रभु एक चीज से मैं जरूर घबराता हूं कि मुझे अभक्तों के घर में जन्म न मिले, जहां आपके गुणों का गुणगान हम न कर सके वैसे घर में जन्म मत देना। और भगवान के भक्त यही चाहते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे इस संसार में बार बार आना पड़े लेकिन ऐसा समाज हो जहां कुछ चर्चित विषय का विषय आप बने, तब तो यह जन्म व्यर्थ नहीं है। हम लोग भागवत का दसम स्कंद पढ़ते हैं, भागवत पंच प्राण रास पंचा अध्यायी, गोपी जनों का मतलब उद्गार पढ़िए, वो शरीर किस लिए धारण किए? केवल उनका शरीर धारण करने का एक ही फल था कि शरीर से जैसे भी हम कृष्ण को प्रसन्न करें। गो मतलब इंद्रियां, पी मीन्स पीने वाली, सारे अंगों से वो कृष्ण को पीती थी, कृष्ण रस लेती थी, कृष्ण की भक्ति करती थी, कृष्ण की सेवा करती थी, इसलिए उनका नाम गोपी पड़ा। जब वह भाव और उस प्रकार की प्रतिक्रिया इस देह के अंदर आना शुरू हुए तब हमें समझना चाहिए कि हम कुछ रास्ते पर सही हैं, नहीं तो जब तक श्लोक एक कोट किए हैं प्रभुपाद जी इस तात्पर्य के अंदर, सुखदेव गोस्वामी श्री राजा परीक्षित ने भागवत के दूसरे पहला स्कंद समाप्त होते होते उन्होंने प्रश्न किया सुखदेव गोस्वामी से कि हे सुखदेव गोस्वामी ये बताइए कि मुझे क्या सुनना चाहिए, किसके विषय में सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और किसकी पूजा करनी चाहिए। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछने के कारण सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित के प्रश्न का बड़ाई करते हुए सराहना करते हुए कहते हैं बड़ी यान प्रश्नेषु, हे राजा आपके प्रश्न बड़ी श्रेष्ठ है, बहुत अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं। क्यों? कि इसी प्रश्नों को जानने में जीवों का कल्याण है। जो व्यक्ति इस प्रकार के प्रश्न जानने का या इसका उत्तर सुनने का प्रयास नहीं करते, सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को अभी भी प्रश्न की सराहना करते हुए दूसरा स्कंद शुरू किए और उसी दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय के एक श्लोक को प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में कोट करते हैं कि हे प्रभु पहले बताए संसारिक जीवों की स्थिति, कि संसार के संसारिक लोगों के पास विशेष रूप से इतने विषय हैं सुनने के लिए, बोलने के लिए, करने के लिए कि उसके पास समय ही नहीं है। तो आध्यात्मिक जगत में कुछ सोचने का या उसके विषय में सुनने का वो समय अपने जीवन में हासिल कर सके। हम लोग इस प्रश्न को अपने जीवन में लागू करें कि देखें हम लोग के पास 24 घंटे का समय है दिन और रात मिला करके, लेकिन कितना समय भगवत भक्ति में बीतता है और उसमें से कितना समय संसार में बीतता है, इसका तुलना हम स्वयं करें। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कोई साधारण जीव नहीं थे, वो जीवों के स्वभाव को जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि श्रोतव्याने राजेंद्र, हे राजा, विषयासक्त जीव के पास बहुत से विषय हैं जिनको वो सुनने में, जिनको पूरा करने में, जिनमें वो तन्मय होकर के अपना जीवन बिता देता है, उसके पास समय ही नहीं मिलता तो अपने जीवन को समर्थ बना ले, अर्थात सार्थक बना ले, भगवान की भक्ति में लगा ले। तो उसी अध्याय प्रथम और दूसरे स्कंद का पहले अध्याय का एक श्लोक प्रभुपाद जी, दूसरा श्लोक पहले अध्याय का, दूसरा स्कंद है, पहला अध्याय है और श्लोक नंबर 2 है, जिसको यहां प्रभुपाद जी कोट करते हैं। प्रभुपाद जी के विषय में अगर विचार किया जाए तो कहां अपनी बुद्धि लगाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाएगा। समय देख करके, श्लोक के सारांश को देख करके प्रभुपाद जी सिद्धांत डाल देते हैं, थ्योरी डाल देते हैं। विचार करो, कहते हैं कि श्रोतव्यादि निराजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः। संति बहुवचन शब्द है और सहस्रशः मतलब हजार। संसारिक मनुष्यों के पास ऐसे हजारों विषय हैं जिसमें वह डूबा रहता है। देखिए, उन्होंने पूछा कि क्या करना चाहिए, नहीं क्या नहीं करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, तो अभी परोक्ष रूप में जहां डूबा हुआ है जीव, जहां फंसा हुआ है, उसका संकेत कर रहे हैं कि संति सहस्र से, मनुष्यों के पास हजारों ऐसे विषय हैं जहां वो फंसा है। अर्थात सुखदेव गोस्वामी के कहने का तात्पर्य यह है कि ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। 6 या 7 श्लोक इस प्रकार का बोलते बोलते वहां पहुंचे सुखदेव गोस्वामी, जो राजा परीक्षित को स्टैंप लगा करके वह श्लोक देते हैं और जीवों को, कि तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च चेतता भयम है। मतलब सर्वात्मा, भगवान, ईश्वर और हरि, 4 शब्द कह करके जोर देकर के उन्होंने कहा कि हरि के विषय में ही सुनना चाहिए, हरि के नाम का ही कीर्तन करना चाहिए और इनके ही कही ही बात को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, इसी से जीव का परम कल्याण होगा। आप सोचिए, शास्त्र कहता है, भागवत जैसा पवित्र ग्रंथ कहता है कि हमारा अधिक से अधिक समय कहाँ बीतना चाहिए और हम लोग आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट, 35 मिनट अगर कथा में बैठते हैं तो कहते हैं हम कथा सुन करके आए हैं। हम रोज कथा सुनते हैं लेकिन हम वहीं के वहीं। अरे सुनो, इस कसौटी पर अपने को कसने का प्रयास करो कि कहाँ है, कहाँ पहुंचे, रिजल्ट क्या होगा। लेकिन इस पर विचार न किए हुए हम लोग भाग रहे हैं। क्योंकि हम लोगों के पास संति सहस्र सब हजारों विषय हैं जिनको पूरा करने में हम लगे हुए हैं। अपश्यताम आत्मतत्वम गृहे सुगृह मेदिनम, जब विषयी जीव के पास हजारों विषय है तो गृह और गृह के कार्यों में अपने मेधी को लगाया है और अपने संबंधियों को संतुष्ट करने में अपना जीवन बिताते जा रहा है, उसका जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाता है। जब इस धरातल पर हम हैं तो इस जमराज जी के उत्तम उपदेश को कहां से ग्रहण कर पाए। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में लिखा है कि जो कम बुद्धि वाले व्यक्ति हैं उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। कम बुद्धि कहे बिल्कुल मूर्ख प्रभुपाद जी नहीं कह रहे। कम बुद्धि कहने का मतलब है कि अधकचरे लोग, न पूरा ज्ञानी है न पूरा पूरा मूर्ख है। एक नीतिकार ने एक नीति श्लोक में लिखा है कि जो व्यक्ति अगर विद्वान है उसको आसानी से समझाया जा सकता है, वो जो मूर्ख है उसको भी आसानी से समझाया जा सकता है, लेकिन जो अधकचरा है बीच का व्यक्ति है उसको ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते। क्योंकि वो उस चीज को उस रूप में ग्रहण ही नहीं कर पाएगा, वह यही अनुभूति करेगा कि मैं सब कुछ जानता हूं। हे राजेंद्र, जिस श्लोक को प्रभुपाद जी तात्पर्य में कोट किए हैं उसका अर्थ लिखते हैं कि हे राजेंद्र, जो लोग भौतिकता में उलझे हैं वे परम सत्य के ज्ञान के प्रति अंधे होने से मानव समाज में अनेक विषयों का श्रवण करते हैं। क्योंकि मनुष्य के पास इतने विषय हैं कि एक को संतुष्ट करने में पूरा जीवन बीत जाएगा। अगर हम लोग जब से पैदा हुए तब से देखते आ रहे हैं, क्या अभी हमारी आंखें भर गई? रोज नया नया दृश्य देखने को ये उतावला होती है। जीवा हर प्रतिदिन नए नए वस्तु को खाने का प्रयास करती है, क्या कभी ये तुष्ट हुई? एक विषय को हम संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, एक इंद्रिय को हम संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। और एक एक को तुष्ट करने के लिए कितने बार जन्म लेने पड़ेंगे ये अनगिनत है। इसलिए मुचकुंद महाराज या श्रीमद् भागवत में कई ऐसे अम्बरीश महाराज हैं जिन्होंने सर्वांग भक्ति किया, सभी अंगों से भगवान की भक्ति किया, उस पद्धति में इस शरीर को डालने का प्रयास करना चाहिए। प्रणाम करें भगवान को, खाएं तो प्रसाद खाएं, दर्शन करें तो भगवान को देखें, सुने तो भगवान के विषय में सुने और बोले तो भगवान के विषय में। भागवत का तो एक दो भौतिक कार्यकलापों में लगे हुए समान मनुष्यों को जानने के लिए अनेक विषय हैं, क्योंकि ऐसे लोग आत्म साक्षात्कार को नहीं समझते। अतः मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिससे जीवन की किसी भी परिस्थिति में वह अपने व्रत पर अटल रहे। जब तक हम लोग भगवान के विषय में एकनिष्ठ होकर के सुनेंगे नहीं, तब तक हम अपने पद पर स्थिर नहीं रहे। इसलिए एक निश्चयता के साथ इस प्रकार के गहरे उपदेश को अपने जीवन में उतारना चाहिए और इस पथ पर विचार करना चाहिए कि वास्तव में हम कहाँ हैं। अरे पूरा नहीं तो कुछ तो ग्रहण करें। कुछ भी ग्रहण करेंगे तो अगर प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित एक दिन वो समय आएगा जो पूरा पूरा मिलेगा। लेकिन हम प्रयास ही नहीं कर रहे हैं तो पाएंगे क्या? और प्रयास इसी प्रकार के स्नेही प्रयास करने से, इसी प्रकार श्रवणेन्द्रियों का सदुपयोग कराने से हम भगवान को ठीक से जान पाएंगे। श्रीमद् भागवतम के अंदर कई बहुत से ऐसे श्लोक हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के भक्ति का, विभिन्न प्रकार के भाव का और विभिन्न प्रकार के भक्ति में लगे हुए भक्तों के स्वभाव का वर्णन। हम लोग पढ़ते हैं, अगर ऋषभ देव का उपदेश पढ़े तो उन्होंने कितना बताया कि शरीर को किस में लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए। वृत्रासुर की स्तुति को पढ़े तो भी पता चलेगा, अम्बरीश महाराज की स्तुति को पढ़े तब भी पता चलेगा, कुंती महारानी की स्तुति को पढ़े तब भी पता चलेगा कि हमारी स्थिति क्या है, विष्णु पितामह की स्तुति को पढ़े तब भी पता चलेगा। अरे भागवत में तो केवल प्रार्थना ही भरा है, खोल करके तो देखें। और देखने के बाद उसके ऊपर जरूर एक बार अकेले में विचार करना चाहिए कि हम कहाँ हैं, हम नीचे हैं या ऊपर हैं कि बीच में हैं, कहाँ हैं, हम अपनी तुलना करें, तब अपनी स्वाभाविक स्थिति हमें समझ में आएगी जो श्लोक के अंदर है। हम अपने स्वभाव को पकड़े रहने का प्रयास करें, हम हैं किनके और बन गए किनके, हम किनके थे, बीच में अभी किनके हैं, इस चीज को हमने बीच में हम केवल थोड़े देर के लिए भटके ना। भागवत के दूसरे, अरे भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक में बताया गया है कि अव्यक्ताधीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तानि निधनानि अवतत्र का परिदेवना, जो शुरू में भी नहीं था बाद में भी नहीं रहेगा, तो बीच में थोड़े देर के लिए वो व्यक्त हुआ तो उसको तू अपना क्यों मान रहा है, तू है ही नहीं। लेकिन उस अल्प समय की अल्प मेधता, अल्प बुद्धि के कारण उसको हम ऐसे पकड़ लेते हैं कि हम उसी को अपना मान लेते हैं। प्रयास करें, भगवान से प्रार्थना करें, गुरुजनों और आचार्यों से विनती और प्रार्थना करें कि यह भाव हमारे बुद्धि के अंदर एक निष्ठ रहे, बैठा रहे, ताकि हम इसी भाव में उत्प्रोत रहे। अन्यथा ऐसे चढ़ने उतरने से, अर्थात भाव हृदय में जो कभी इतराते हैं तो हम उछाल मारते हैं, और कभी कहते हैं सब ऐसे ही हैं, क्या करना। हम जब तक इसको गहराई से विचार करते हुए, पढ़ते हुए और अपने जीवन में लागू करते हुए नहीं चलेंगे तब तक हम विकास नहीं कर पाएंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद महाराज की।